मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान।
मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र पर चर्चा चल रही है, जैसे आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब ने 250 वर्ष पहले लगभग इसी जयपुर में बनाया। पंडित टोडरमल को आचार्य कल्प कहा जाता है, यद्यपि दिगंबर धर्म में आचार्य पद पंच परमेष्टि में आता है, इसलिए वो नग्न दिगंबर संतों के ही होता है। फिर भी जैसा कार्य आचार्यों ने जिनवाणी की सेवा का किया, उसी प्रकार का कार्य पंडित टोडरमल ने जिनवाणी की सेवा का किया, इसलिए उन्हें आचार्य कल्प कहा गया, उन्हें आचार्यों के समान, आचार्य नहीं पर आचार्यों के समान कार्य किया। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उन्होंने मंगलाचरण में वीतराग विज्ञान को नमस्कार किया था। कल दूसरे अध्याय का मंगलाचरण अपन ने पढ़ा था, वहां भी उन्होंने निज भाव को याद किया था। तो आज तीसरे अध्याय का मंगलाचरण अपन पढ़ते हैं, तो देखो इसमें भी उसी निज भाव को याद किया है। तो निज भाव सदा सुखद अपनों करो प्रकाश, तो जो बहु विधि भव दुखन को करी है सत्ता नाश। अपना जो भाव है त्रिकाली स्वभाव भी और उसके आश्रय से प्रकट होने वाले सम्म दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भी, उसके आश्रय से ही संसार के दुखों का नाश होगा, सत्ता से नाश होगा। इस तरह मंगलाचरण करके वे तीसरे अध्याय को आरंभ करते हैं। पहले अध्याय में मंगलाचरण, पंच परमेश्वरी का स्वरूप, ग्रंथ की प्रमाणिकता, वक्ता श्रोता के लक्षण, सुनने और पढ़ने योग्य शास्त्र कैसे होना चाहिए, ये सब बातें कहकर इस सरल सुबोध मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के स्वाध्याय करने की प्रेरणा दी। और दूसरे अध्याय में कर्म बंध का निदान, जैसे कि कोई वैद्य के पास मरीज जाता है तो वैद्य पहले उसकी बीमारी का निदान करता है, स्वयं निदान करता है और बाद में मरीज को भी बताता है कि तेरे को क्या तकलीफ है, कैसी होती है, क्या है, जिससे कि मरीज को विश्वास हो। तो उन्होंने उसी शैली के अनुसार सबसे पहले कर्मबंध विधान नाम से कि अनादि से ही इस आत्मा को द्रव्य कर्मों का भी बंधन है और मोह राग द्वेष के भाव रूप भाव कर्मों का भी बंधन है, उन कर्मों के बंधन से इसकी कैसी स्थिति बन रही है, इसकी चर्चा उन्होंने विस्तार से दूसरे अध्याय में की। अब वो उसी के अनुसार तीसरे अध्याय में जो स्थिति तेरी आज बन रही है उस स्थिति का नाम है संसार, और जो दुख स्वरूप है, जो साक्षात दुख ही रूप है, उस संसार वर्तमान की जो तेरी और मेरी स्थिति है वो सब दुख रूप है, संसार अवस्था है। और इस आत्मा की एक अवस्था ऐसी भी हो सकती है कि जिसमें रंच मात्र भी दुख नहीं हो, इस सारे दुखों का अभाव हो जाए, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। ये दोनों ही बातें वो इस अध्याय में बताने वाले। जैसे उस मरीज से वो वैद्य कहता है कि देखो वर्तमान में तेरी कैसी हालत हो रही है वो तो मैंने तेरे को बताई, और जो कभी कभी तेरे को थोड़ा सुख सा लगता है वर्तमान अवस्था में, वो वास्तव में सुख नहीं है, उस दुख की कमी है, बस इतनी सी बात है। वो एक बीमारी का ही एक लक्षण है, तो उसको जो सुख बुद्धि तेरी उसमें है वो बात गलत है। इसलिए पहले तू ये निर्णय कर ले कि वर्तमान में जो तेरी बीमारी है वो दुख रूप ही है। तू देख रहा है ना कि मेरा 4 किलो वजन बढ़ गया है, अब मैं थोड़ा मोटा ताजा हो गया हूं, तो ये जो तेरा मोटा ताजा पना है ये बीमारी का लक्षण है, स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। तू स्वस्थ हो गया है ऐसा भ्रम नहीं कर। ऐसे कदाचित पुण्य के उदय से तेरे को थोड़ी सी अनुकूलता भाषित होती है, भयंकर भूख की पीड़ा में 2 रोटियां खा लेने पर कुछ क्षणों के लिए तुझे ऐसा लगता है कि अब तो आराम लगा, वो भी आराम नहीं है, वो भी दुख रूप ही है। ये संसार दुखमय है, एक बात बताना है। वर्तमान की अवस्था क्या है वो तो अभी तक बताई थी 2 अध्याय में, अब 3 में क्या बता रहे, अंतर क्या है 2 और 3 में, इस पर ध्यान देना। 2 में तो कर्म के उदय की वजह से नवीन कर्म कैसे बनता है, सत्ता में कर्म कैसे रहता है, उदय में आता है तो क्या स्थिति बनती है, क्या क्या होता है, अभी तो सिर्फ ये बताया था। अब ये बता रहे हैं कि जो अभी होता है वो सब दुख रूप है, उसमें कभी तो मैं सुखी होता हूं और कभी मैं दुखी होता हूं, ऐसा नहीं है। तो संसार में कुछ लोग तो सुखी हैं और कुछ लोग दुखी हैं, ऐसा नहीं है। हम पूछते हैं ना, तो आपके आपके गांव में कितने घर जैनियों के हैं, जैनियों के घर तो 100 होंगे लेकिन 10 घर सुखी है और 99 घर दुखी है, क्यों बोलते हैं ना जी ऐसे। तो 10 घर सुखी है माने तो पैसे वाले हो ना थोड़े बहुत, परिग्रह ज्यादा हो तो उसे बोल देते वो सुखी है। ओडोमल जी में इस अध्याय का पूरी विषय वस्तु यही है कि जो जिसे तुम संसार में सुख कहते हो वो सुख है ही नहीं, वो दुख ही है। चारों गतियों में दुख ही दुख है, सुख कहीं है ही नहीं, ये सब इसमें बताएंगे। दो तरीके से बताएंगे कि कर्म के उदय, पिछले अध्याय में बताया ना किस कर्म के उदय से कैसी अवस्था बन रही है, अब इसमें बताएंगे वो अवस्था दुख रूप क्यों है। वो अवस्था सब दुख रूप ही है, उसमें कहीं सुख की गंध नहीं है। तो एक तो बताएंगे उन कर्मों की अपेक्षा और फिर बताएंगे गतियों की अपेक्षा, निरोध में, मनुष्य गति में, प्रंज गति में, चारों गतियों में दुख ही दुख है, इस बात को वो उसमें बताएंगे। तो रमन जी की यह विशेषता है कि वो जब संसार की प्रत्येक अवस्था में दुख का निरूपण करते हैं तो उसमें फिर वो एक एक कर्म के उदय के अनुसार घटाते हैं। अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे तो बात ख्याल में आएगी कि मनुष्य गति में ज्ञानावरणी कर्म के उदय से क्या दुख है, ऐसे हर गति में कौन कौन से कर्म की उदय से क्या क्या बात हो रही है, वो सब परिस्थिति को बताएंगे। तो एक तो इसमें ये बताने वाले हैं कि संसार में दुख ही दुख है, इसमें सुख खोजना बालू में से तेल निकालने जैसा प्रयत्न है, ख्याल है ना। इसलिए इस दिशा में कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी ये बताएंगे कि फिर सुख कहां है, है सुख के नहीं, किसी आत्मा की एक अवस्था ऐसी है जिसे मोक्ष कहते हैं, वो सुख ही रूप है और उसके बिना कभी भी सुख हो ही नहीं सकता। तो ये इसका सेंट्रल आइडिया है, संसार दुख स्वरूप है और मोक्ष सुख स्वरूप है, ख्याल में ना। इसी अध्याय को आधार बनाकर दौलत राम जी ने 6 डाला की पहली ढाल लिखी है और उन्होंने वो चारों गतियों के दुख निरोध से शुरू करके शुरू किए हैं और देव गति तक के दुख बताए हैं, वो भी इस अध्याय का जो पहला भाग है उसका है। दूसरा भाग तो मोक्ष सुख की बात नहीं की उनने, मोक्ष सुख की बात तो 3 ढाल की पहली पंक्ति में की क्या कुलता शिव माही नाते शिव मग लाग्यो चाहिए। और इस अध्याय का भी दो पार्ट है, एक कर्म के उदय से कैसे दुखी होता है जीव, वो नहीं लिया उनने, तो चारों गतियों में कैसे दुखी है जीव, इतना पार छड़ा ला की तली ढाल में लिया है। यहां से बात उन्होंने शुरू की है। तो वो क्योंकि इस जगत में जीवों को ऐसा बहुत भ्रम है कि ठीक है हम मोक्ष तो ठीक है, जब जाएंगे जब चले जाएंगे, अपंतिम काल है, यहां में किसी को मोक्ष होता ही नहीं है, तो संसार में अपन ऐसा प्रयत्न करें कि संसार ही सुखी हो जाए, और इससे क्या भागने से भाग। जब मैं छोटा था ना 8-10 वर्ष का, तो मेरे मन में ऐसा रहता था कि अपने गांव में तालाब होना चाहिए बहुत अच्छा, उसमें जाके नहाए, बढ़िया अच्छा तालाब। तालाब नहीं था हमारे गांव में, तो उस वक्त भारत आजाद आजाद हुआ था, तो प्रश्न निकलता था कि जो गांव के लोग आधा श्रमदान करें तो गवर्नमेंट आधा खर्चा करके वहां तालाब बना देगी, ये बना देगी। तो हमारे गांव वालों ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उसके बाद भी जो कुछ बना वो बिल्कुल नहीं बने जैसा ही था, क्योंकि उसके लिए सोच चाहिए ना पानी आने की, वो तो थे नहीं, कोई नाला नदी चाहिए ना, नहीं थी। तो मन में असंतोष बना ही रहा कि तालाब होना तालाब होना। तो फिर दिमाग में एक बात आई कि देखो किसी की बात क्यों सोचते हो, कि जहां हम हैं वहां तालाब बनाने की बजाय तालाब वाला गांव अच्छा लगता है, इस गांव को छोड़कर तालाब वाले गांव में जाओ। क्या क्यों? तो इसलिए फिर मैंने बाद में तालाब वाले ही गांव पसंद किए। जब मैं पारोली में हेडमास्टर था तो मेरे स्कूल तालाब के किनारे ही था, और मेरे जो ऑफिस की खिड़की बाबू साहब जानते हैं तालाब की तरफ ही खुलती थी, मैं वहीं देखता रहता था। तो शुरू किया तो बमीना में सिर्फ इसलिए पसंद किया कि वहां बहुत अच्छा तालाब था। वो गांव को पसंद कर लेना। जब यही बात मैंने अपने सर्वोदयी दोस्तों से कही तो उन्होंने फिर मेरे दिमाग को पलटा कि ये तो पलायनवाद है, इससे सारे देश का और गांव का विकास कैसे होगा। यदि आप चाहते हैं कि तालाब गांव के लिए बहुत बढ़िया चीज है, तो जहां आप हैं वहीं तालाब बनाना चाहिए, समझिए ना, विकास तो ऐसे होगा। और उसके बाद में जब मेरे को अध्यात्म का रंग लगा तो फिर मैं अपनी लाइन पर आ गया हूं कि ये बात सही नहीं है कि हम जहां हो वहीं सुख खोजें, बात ये सही है कि जहां सुख हो हमें वहां चले जाना चाहिए। वो तो संसार में सुख खोजने जैसी बात हो गई ना अपने गांव में तालाब बनाने की बात, क्यों? और जिस गांव में तालाब है उसमें चले जाने की बात मोक्ष में सुख है, इसलिए हमें इस संसार को छोड़कर मोक्ष में चले जाना चाहिए। सही क्या है बोलो आप? अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि हम इसी संसार को स्वर्ग बना देंगे, ऐसे भाषण देने वाले बहुत मिलेंगे, अपने घर को स्वर्ग बना दो, अपने गांव को स्वर्ग बना दो, तुम्हारे में ये ताकत है, तुम में ये शक्ति है, क्यों? अपना देश, अपना गांव, अपना नगर, अपना घर स्वर्ग बन जाए। लेकिन वो कहते कि नहीं, संसार तो दुख स्वरूप ही है और सुख तो अकेले मोक्ष में ही है, दूसरी जगह कहीं सुख है ही नहीं। आकुलता शिव माही न ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। संसार में सुख खोजने का प्रयास करना एक नंबर की मूर्खता है। इसलिए उनने इस तीसरे अध्याय में पहले तो संसार के दुखों का वर्णन किया और उसके बाद में मोक्ष के सुख का भी थोड़ा सा नमूना बताया एक दो पेज में। बाकी का मेरे ख्याल से 30 पेज का अध्याय है, तो उसमें 25-26 पेज तो संसार के दुखों के वर्णन में है और 2-3 पेज मोक्ष के सुख में के वर्णन में है। इस तरह इसके 2 पार्ट हैं बड़े बड़े, एक संसार का दुख और एक मोक्ष का। अब जो संसार का दुख का वर्णन इसमें है उसको उन्होंने 2 हिसाब में बांटा, कि पहले कर्मों के हिसाब से और फिर बाद में जतियों के हिसाब से। देखो कल एक बात कही थी, दूसरे अध्याय में खुद पंडित जी ने लिखा था कि दुख का कारण बंध का कारण अकेला मोहनीय कर्म है और उसके उदय में होने वाला मूल भाव है, बाकी के सात कर्म वो बंध के कारण नहीं है और बंध के कारण नहीं है तो दुख के कारण भी नहीं है। और आज आठवीं कर्मों में दुखपना सिद्ध कर रहा है। क्या अंतर है इन दोनों एंगल में? उसमें तो ये बताया कि मूलनी कर्म के उदय से जो मूल राग देश होते हैं वो बंध के कारण है और बंध फिर संसार का कारण माने दुख का कारण है, और यहां ये बता रहे हैं कि बंध का कारण तो नहीं है वो ज्ञानावरणी कर्म का उदय। ये ज्ञानावरणी कर्म के उदय में जो अवस्था हो रही है वो अवस्था कोई अच्छी नहीं है, सुख स्वरूप नहीं है, संतोष करने लायक नहीं है। हमको तो अच्छा ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, इतना बढ़िया से काम चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी दुख स्वरूप है क्योंकि इसके साथ में मोह विद्यमान है। इसलिए साथ में बार बार ये भी कहते हैं कि मोहनी कर्म साथ में विद्यमान है ना, इसलिए जो आठों कर्म के उदय में जो जो अवस्थाएं बन रही हैं वो सारी अवस्थाएं तेरे को दुख रूप हो जाती है। पहले जो ज्ञानावरणी की बात करते, ज्ञानावरणी दशनावरणी है ना, ज्ञानावरण दशनावरणी कर्म के उदय में तो उस जीव को जो अज्ञान है इसलिए जो स्वयं को नहीं जानता है इसलिए वो तो अज्ञान तो दुख रूप है ही, लेकिन जो इसकी क्षेत्रम रूप अवस्था प्रगट है वो इतनी पराधीन है, इतनी शर्तें उसमें लग रही हैं कि वो जानना नहीं जानने जैसा ही है। एक इंद्रियादि की हालत तो जैसी है उसकी हम क्या चर्चा करें, थोड़ी श्रेणी पंचेंद्रीय में जो हम और आप लोग हैं उन्हीं की चर्चा करके यहां पर अपन विचार करते हैं कि हमको पांच इंद्रियों के माध्यम से पांच इंद्रियों के विषयों का ज्ञान होता है, पांच इंद्रियों के विषयों का ज्ञान होता है। तो ज्ञान कितनी मर्यादा लिए हुए है, जैसे कि आंख का उदाहरण कर दिया था कि उजेला चाहिए, चश्मा चाहिए, और फिर दूरी भी इतनी होनी चाहिए, ज्यादा दूर नहीं हो, ज्यादा पास नहीं हो, तो वो भी बहुत स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इतनी शर्तें हैं तो ठीक है, जितना दिखाई देता है उतना ही उतना सुख तो कहो, जितना नहीं दिखाई देता उतना दुख कह दो। तो वो कहते हैं कि उतना सुख इसलिए नहीं कि साथ में मोहिनी कर्म के उदय से इसकी इच्छाएं ऐसी हैं कि इसे सब जानना है। क्या उतने जानने में इसे संतोष नहीं है, दुख रूप है। जानने की इच्छा तो बहुत है और जानना होता है बहुत थोड़ा, इसलिए चित्त में असंतुष्टि और आकुलता निरंतर बनी ही रहती है। देखो 47 पेज पर आप देखिए पढ़िए, वहां इच्छा तो त्रिकाल वर्ती समस्त विषयों को ग्रहण करने की है। बोला मैं सर्व का स्पर्श करूं, सर्व का स्वाद लूं, सर्व को सूंघूं, सर्व को देखूं, सबको सुनूं, सबको जानूं। इच्छा तो इतनी है परंतु शक्ति इतनी ही है कि इंद्रियों के सन्मुख आने वाले वर्तमान स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द उनमें से किसी को किंचित मात ग्रहण करे तथा स्मरणादि के से मन द्वारा किंचित जाने तो भी बाह्य अनेक कारण मिलने पर सिद्ध हो। इसलिए इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती, ऐसी इच्छा तो केवल ज्ञान होने पर संपूर्ण हो। इच्छा इतनी है कि जितना केवल ज्ञान होकर के जाना जाता है ना उससे कम जानने में ऐसे संतोष नहीं है, ख्याल में है ना। और जानना बहुत मर्यादित है, जब भी सिद्धों के सुख का वर्णन करेंगे ना तो वहां इस बात पर वजन देंगे कि देखो यहां डबल इंतजाम हुआ है सुख का, यहां क्या है तकलीफ, कि जानने की इच्छा तो सारी दुनिया की है और जानना बहुत अल्प होता है। अब केवल ज्ञान हो गया तो कहते इच्छा तो नहीं रही बिल्कुल भी जानने की, पर जानना सबका हो गया। डबल इंतजाम है, अब दुख रहे खड़ा कहां से रहेगा, क्यों या तो इच्छा होती ही जानने की और सब जान ले तो भी दुख नहीं होता। तो इच्छा तो बिल्कुल भी जानने की नहीं रही, क्यों और सारा लोका लोग ज्ञान में झलक रहा है। यदि भूख तो ऐसी लगती है कि पत्थर पचा जाए, क्यों और खाने को नहीं मिलता है, पानी भी नहीं मिलता है, दूध भी नहीं मिलता, कोई चने भी सूखे खाने को नहीं मिलते हैं, कितने दुख है ने? और फिर कहते हैं एक समय ऐसा आ गया कि सामग्री तो इतनी विषय सामग्री है कि दिन ना रात घी में डूबे रहे तो कमी पड़ने वाली नहीं है, क्यों? अब जगत तो ये कहता है कि क्या करें, भूख ही नहीं लगती, इस बात का दुख है जगत को। वो तो कहते हैं ये डबल इंतजाम हुआ है तेरे को सुखी होने का, बोलो क्यों? भोग सामग्री सब मौजूद है और खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो तो उसे तो इस बात का दुख है। किस बात का? कि अब खाने की इच्छा होती, खा सकता होता, खाने की शक्ति होती तो मजा आ जाता। तुम्हें संसार में सुख कह सकता है, ये वही स्थिति तुम्हें प्राप्त हो गई ना जो ज्ञान के संबंध में अरहंत भगवान को है, कि जानने की इच्छा बिल्कुल नहीं है और जानने में लोकालोक आ रहा है। तो तुम्हें खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं है और खाने के लिए सामग्री बहुत तैयार पड़ी है, तो यही तो रोना है। जब खा सकते थे तब सामग्री नहीं थी, जब सामग्री है तब खा नहीं सकते, अब तेरे देश का दुख हो गया। बोले इस संसार में सुख हुए कैसे? जो ज्ञानावरण कर्म के उदय में सेवसम में जो अवस्था है संसार में, संसारी जीवों को एक इंद्री से लेकर शनि पंचेंद्री तक, तो वो दुखी रूप है। यदि मन पर ज्ञान हो गया लेकिन विदुमति है तो विपुलमति क्यों नहीं? कुटिल आदमी के मन की बात मैंने क्यों नहीं जान पाई, क्यों? अब बोलिए कि पहले के जमाने में न तेली भवन थे, न कुछ नहीं साधन नहीं थे, न टीवी कुछ नहीं थे, और कभी पोस्ट कार्ड डाल दिया करते थे, क्यों तो बहुत ज्यादा 10-20 दिन में ने? तो भी हमारा कोई इष्टदाता था, बच्चे बाहर जाते थे, परदेश जाते थे, क्या नहीं कोमल जनी, तब भी तो महीना भर में चिट्ठी आ गई कि हम अच्छी तरह हैं, उसमें ही संतोष था क्या? और आज ये 24 घंटे में दो दफा कुशलता जाननी है, दो दफा फोन में करनी है, और दो दफा जान ली तो 12 घंटे तो नहीं जानी, तो जाते ही फोन कर देना, तो कहीं रास्ते में फोन ही कर देना। इसकी जानने की आकुलता का कोई अंत है? बहुत बढ़िया प्रश्न प्रकरण आता है पंचवटी में, राम और सीता और लक्ष्मण हैं, सीता और राम सो रहे हैं और लक्ष्मण पहरा दे रहे हैं। क्षत्रियों को तो सुरक्षा के लिए पहरेदार चाहिए ही है ना, और वो सोच रहे हैं रात में बैठे बैठे कितना बढ़िया आनंद है, कितनी बढ़िया चांदनी खिली हुई है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, कितना मौसम बढ़िया है, न किसी बात की चिंता है। मैंने वहां अयोध्या में तो बहुत तकलीफें थी, लेकिन ऐसा जंगल जैसा मंगल कहीं होगा नहीं। तारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी दिसी हुई है अवनी और अम्बर्त में। सोचते सोचते कितना बढ़िया है, लेकिन एक बात का दुख है। काहे का दुख है? कि ये जो हमारा सुख है ना, ये हमारी माताएं नहीं जानती हैं। हमारी माताएं माने कौशल्या केकई सुमित्रा, समझे ना, हमारी माताओं को इस बात का भरोसा नहीं है कि हम जंगल में इतने मजे में होंगे। वो तो समझ रही होंगी कि हम जंगल में बहुत तकलीफ में हैं। ये सोच सोच कर हमारी माताएं दुखी होंगी, हम तो हैं सुखी, लेकिन हमारे बारे में सोच सोच कर कि हम दुखी होंगे, माताएं दुखी हो रही होंगी, इस बात का दुख मुझे है। लक्ष्मण कहता है दो ही जगह दुखी हो गए, माताएं राजमहल में सब तरह से सुखी हैं, समझ गए ना, और हम यहां सब तरह से सुखी हैं, वो कहता है। लेकिन क्योंकि हमारा सुख उन्हें मालूम नहीं है और उनका सुख हमें मालूम, हो सकता है आराम से सो रही हो, लेकिन हम सोच रहे हैं कि वे हमारी चिंता में दुखी हो रही होगी, उन्हें नींद नहीं आ रही होगी, तो हम उनके दुख का विचार करके दुखी हैं और वे हमारा दुख का विचार करके दुखी होंगे। तो वहां पर एक बहुत अच्छा निष्कर्ष दिया है मैथिली सेन गुप्त ने कि स्नेह जो है, प्रेम है, वो और सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन वो परोक्ष पने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो परोक्ष शब्द का प्रयोग है, ख्याल में आपको, तो परोक्ष बात, परोक्ष पने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो चाहता है कि जो हमारा प्रेमी है, स्नेही है, वो मेरे प्रत्यक्ष रहे, आंख के सामने रहे। वो दुखी हो तो, सुखी हो तो, लेकिन आंख के सामने है तो उसे संतोष है, और आंख के पीछे वो कितना ही सुखी हो लेकिन उसका प्रेमी चिंताग्रस्त रहेगा ही, है ना। वहां जाके वो कितना ही आराम में हो लेकिन जो प्रेम करता होगा, न मालूम कैसे होंगे, न मालूम कैसे होंगे, न मालूम कैसे होंगे, वो चक्कर में रहेगा। तो प्रेम परोक्ष पने को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये निष्कर्ष है। वो बात मैं यहां कहना चाहता हूं कि हमारा ज्ञान परोक्ष है ना, असली सकल प्रत्यक्ष तो केवल ज्ञान ही है। हमारे मत ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो परोक्ष है ना, तो इनका जो परोक्षपना है उसमें कभी सुख नहीं हो सकता, बोलेगा ना, कि हम दोनों ही सुखी हैं फिर भी दुखी हैं, क्योंकि परोक्ष है। हम रागी हैं और रागियों को परोक्षपना बर्दाश्त नहीं है, तो हम रागी भी हैं, संसारी जीव, और हमारा ज्ञान भी परोक्ष है, इसलिए हम निरंतर दुखी 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 दुखी। ऐसे ज्ञाना वहन दर्शना वहन कर्म के उदय में जीव ज्ञान और दर्शन के होने पर भी, यद्यपि वो ज्ञान और दर्शन जो प्रकट है वो स्वभाव का अंश है, वो बंद का कारण नहीं है, और जो अज्ञान है, नहीं जानना, वो भी बंद का कारण नहीं है। वर्तमान में बंद का कारण नहीं है, लेकिन वर्तमान में दुख स्वरूप है, क्योंकि साथ में मोह का उदय है। ये इसका सारांश है, सब पूरा आप पढ़ेंगे ना तो इसमें यह सब बात निकलेगी जो मैं आपसे कह रहा हूं। देखो, और मोह के जोर से ये जो इसका ज्ञान है इसे और संकट में डालता है, बंद तो नहीं करता है। अगर दुख की सिद्धि करनी है ना तो कैसे संकट में डालता है, तो 47 नंबर पेज पे ही पढ़ो। सूक्ष्म रूप इंद्रियों से तो इच्छा पूर्ण होती नहीं, इसलिए मोह के निमित्त से इंद्रियों को अपने अपने विषय ग्रहण करने की निरंतर इच्छा होती ही रहती है, उससे आकुलित होकर दुखी हो रहा है। ऐसा दुखी हो रहा है कि किसी एक विषय के ग्रहण के अर्थ अपने मरण को भी नहीं गिनता। वो साधारण दुख नहीं है, वो जानने की इच्छा है और उसके लिए मौत के मुख में चला जाता है, है ना। जरा वो धूले मूले ऐसे होते ना खतरनाक, जब वो हार्ट अटैक वाले पेशेंट नहीं बैठे झूले पे, झूलेंगे तो वो उनको हार्ट अटैक हो सकता है, तो होगा तो हो जाएगा, मैं तो इधर से जाता हूं। क्या है, क्या देखना, झूले में ऐसे चक्कर काटेगा, क्या है, तो देखना चाहता हूं कि ऐसे कैसा लगता है। तो वो ज्ञान ही है और कुछ, कैसा लगता है, और मरने के लिए जाता क्या नहीं जाता उसमें मौत की कीमत पर। देखो मैं जरा बहुत कठोर उदाहरण दे रहा हूं, संदेश कर डॉक्टर कहता है तुम हार्ट के पेशेंट हो तो जीना नहीं चढ़ना, घर का भी जीना नहीं चढ़ना, तो मैं तो जा रहा हूं संदेश कर, तो यात्रा करना देखू, देखना तो ऊपर ऊपर हमने सुना सुड़िया उड़िया बन गई, कैसी बनी देख रहे, तो एक जगह चल जाता है बेटा, चल जा बेटा सूली में भरा करे, क्या बोलेंगे हिंदी में, घूमने फिरने का पर्यटन, हाँ पर्यटन, वो सब इस जीव की इसी इच्छा के आधार पर चल रहा है। क्या है, इसे देखना है, देखना है, हिंदुस्तानियों को अमेरिका देखना है, अमेरिकन वालों को हिंदुस्तान देखना है, देखने के अलावा क्या किसी को और लेना मिलना जुलना है क्या, अरबों का बिजनेस है, ये रेलगाड़ियां प्लेन ये सब इनसे ही भरे रहते हैं, टूरिस्टों से। ये सिर्फ जानने की जिज्ञासा है ना भाई, तुम्हें केवल ज्ञान हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब जानने में आ जाएगा। काहे कुछ व्याकुलता करते हो, कहें फिर क्या काम का जब इच्छा ही नहीं रहेगी जानने की। इच्छा हो और इसकी पूर्ति हो। देखो उदाहरण क्या कहते हैं, एक एक अर्थ के ग्रहण करने में मरण को नहीं गिनता, जैसे हाथी को कपट की हथनी के स्पर्श करने की, वो स्पर्श का ज्ञान ही तो है। और क्या बोल रहे हो, ज्ञान ये ज्ञान के उदाहरण में दे रहे इस्ताल जी, है ना। मत्स्य को बंसी में लगा हुआ मांस स्वाद लेने की, भ्रमर को कमल की सुगंध सूंघने की, पतंगे को दीपक का वर्ण देखने की, और हरण को राग सुनने की इच्छा ऐसी होती है कि तत्काल मरना भासित हो तथापि मरण को नहीं गिनते। वही जब मैंने सुनाया था ना आपको, पता है क्या नहीं, कि एक आदमी अपने दरवाजे पे सुबह बैठकर रोजाना दातुन किया करता था। गांव का आदमी था, तो सुबह गांव के गाय भैंसे वहां से निकलती थी जंगल जाने के लिए, तो एक भैंस के ऐसे टेढ़े टेढ़े सींग थे, तो उसके मन में विकल्प आता कि यदि मेरी गर्दन इस भैंसे के सींग में फंस जाए भैंस के तो क्या होगा, ये जानने की से जिज्ञासा थी। तो बराबर छह महीना रोजी ना तब वो निकले और सोचता रहा, अंत में उसे से नहीं रहा गया। हमको लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जानने की जिज्ञासा कितनी तीव्र होती है कि मैं जरा गर्दन डाल के देखूं कैसा लगता है। तो उसने गर्दन डाल के देखी उस भैंस के सींग में, और भैंस बेचारी बिचकी भागी, तो क्या हुआ होगा समझ में, सीधा अस्पताल पहुंच गया तो लोग आए खबर पूछने के लिए, क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया, कैसे हो गया, कि वो भैंस के सींग में मेरी गर्दन फंस गई। कैसे फंस गई, किसने फंसाई भाई, ये कैसे हो गया, तो कब मैंने फंसाई तो किसने फंसाई, क्यों फंसाई, कि मैं सोचता था इसके होने से क्या होता है देखूं। तो बोले भैया तुमने गर्दन फंसाने के पहले सोचा नहीं, बोले छह महीने सोचा। तब ये गर्दन फंसाई है, बिना सोचे समझे फंसाई थी। मैंने वो जानने की जिज्ञासा कितनी तीव्र होती है, ऐसी मौत की कीमत पर भी कोई ऐसा काम करना चाहता है, अग्नि को छू के देखना चाहता है बच्चा, काहे के लिए, कैसी है देखो, कैसी तो देखो, और जल जाता है। और एक कोई उस एक बेवकूफ की बात नहीं है, कौन जिसने वो भैंस के गर्दन फंसाई थी, ऐसे सारे संसारी जीवों की यही हालत है। जिसकी तलाक होती है उसे मुझे कहा भैया तुमने पहले नहीं सोची कि शादी करी काहे को जी तलाक लेने दी, अरे बहुत सोची थी तो पहले देख के सोच समझ के करते कि बरसों तक हमने डाइटिंग किया था, छह छह महीने तक एक दूसरे को देखा था, सब किया था, सब गर्दन फंसाई थी, तो सब ने गर्दन ऐसी ही फंसाई है। तू सोच के मैंने संसार की लौकिक जिज्ञासा कि आखिर होए देखें तो क्या होता है, देखें तो कैसा होता है। ये टीवी में सिनेमा में इतना नंगापन दिखाते हैं, तो एक कहते लूट है, लूट काय के लिए लूट है, क्या है उसमें, एक फिल्म है ना, प्लास्टिक है, वहां कोई आदमी है नहीं है, लेकिन इस जगत को जो बस जानने की इच्छा कुछ नहीं, बस क्या है, इतना अंग दिख रहा है, ऐसा यहां होगा, कुछ फर्क है, बस थोड़ा सा नंगापन दिखा दिया तो वाह 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 फिल्म बहुत चल जाती है, तो जरा फिल्म ज्यादा चल जाती है। फिर कहते हैं कि ऐसा तो क्यों, ये क्यों चल जाती है, करोड़ों रुपया अरबों रुपया वो नंगेपन पे क्यों बह जाता है, आप बताओ मुझे। ये टोरेमल जी कहते हैं कि ये जो ज्ञानावनी क्रम के उदय से संसार में होने वाले दुख कर्म सब, अभी अपन एक एक में इतने विस्तार में जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, क्यों ऐसे ज्ञानावन दर्शनावन वेदनीय कर्म जो है वो तो भाई साहब साता और असाता का ही नाम है, अनुकूल सामग्री और प्रतिकूल सामग्री का ही नाम है, उसमें तो कोई ज्यादा सिद्ध करने की बात है नहीं, सहज बात है। और मोहिनी कर्म के उदय से, खासकर दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से, ये सारे जगत में अपनापन स्थापित कर लेता है। जो इसके जानने में आता है सो अपना, किसी खोटी आदत है। यानी पर में अपनापन स्थापित होना उसका एक काम है दर्शन मोहिनी कर्म, माने मिथ्यात्व। मिथ्या तो मिथ्यात्व में क्या होता है कि जो इसके ज्ञान में आया वो अपना, क्योंकि जो ज्ञान में नहीं आया उसमें तो अपनापन कैसे स्थापित करे। ये तो इसकी मजबूरी है, यदि वो आ गया होता तो उसमें भी ये कर लेता। और इसी को गे आकार ज्ञान का परिणमन करते हैं, कहते हैं जो मिथ्या दृष्टि का, सम्य दृष्टि की बात नहीं। माने जो पदार्थ इसके जानने में आया पर उसमें ये अपनापन अथवा उसमें दो हिस्से कर देता है कि ये मेरा और ये पर आया, वो पर दो पर, जो पर पदार्थ है और वो अपना तो है नहीं, उसका परिणमन अपने अनुसार तो होने वाला है ही नहीं। तो बस फिर इसकी पागल की भांति उदाहरण दिया है इसमें, कैसे वो एक चौराहे पर पागल रहता है, चौराहे नहीं पड़ाव, गांव से जो मंडी होती है ना अनाज बेचने की मंडियां, तो गांव वाले बैलगाड़ी में माल भर भर करके मंडियों में लाते हैं। तो कोई 10 मील से, कोई 20 मील से, तो शाम को चल देते हैं और रात के 9-10 बजे 12 बजे तक चलते हैं। तो 2-4 घंटे वो आराम करते हैं कहीं, और फिर जाकर सुबह चलकर मंडी में पहुंच जाते हैं। तो जगह जगह वो ऐसे पड़ाव होते हैं कि जहां वो लोग इकट्ठे आकर के आराम करते हैं, वो जहां सुविधा हो, बड़ी जगह हो, गाड़ी खड़ी कर लें और 2-4-10 गाड़ियां एक साथ खड़ी हो जाएं तो चोर डाकुओं का डर कम रहे, वो स्थान को पड़ाव बोलते हैं। तो पड़ाव पे एक आदमी रहता है, 100 गाड़ी वहां आ गई तो वो समझता है 100 गाड़ी मेरी है। और फिर जब सुबह 4-5 बजे वो चलने लगती है तो रोकने की कोशिश करता है, रुकती तो है नहीं, तो रोता है कहीं मैं लुट गया, मैं लुट गया, मैं लुट गया। ऐसा पागल भी कोई होता जगह होगा जगत में, ऐसे पागल घर घर में बैठे। ये अपना घर एक पड़ाव है, ख्याल में है ना। और जो अपन लोग आए हैं ना, कहीं के यात्री हैं और इस पड़ाव पर आकर एक निश्चित काल में विश्राम करने के लिए रुके हैं, और अपना काल पूरा होते ही नियम से जाने वाले हैं। अब वहां आने की वजह से हम तो अपने कारण आए हैं, अपने कारण जाएंगे, और कोई हमें अपनापन स्थापित कर ले है ना, तो उसके दुखी होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है ना। तो ऐसा दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में ये जीव किस प्रकार दुखी होता है, तो चारित्र मोहिनी कर्म तो कसाएं हैं भैया। चारित्र मोहिनी का मतलब होता है कसाएं, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका बहुत वर्णन किया है कि चारित्र गुस्सा आता है तो आंखें लाल हो जाती हैं और क्या की हालत रहती है। कोई बड़ा महंत पुरुष बीच में आए तो उसकी भी नहीं गिनता है और गालियां बकने लगता है, माँ बहन का भी ख्याल नहीं करता है। यहां तक लिखा टोडामल जी साहब ने तो क्रोध आने पर मरण तक भी हो जाता है। ऐसे मान आने पर, मान का वर्णन माया से, लोभ से कितना कितना दुखी है, काम से आया ना वो घास रति रति शोक भय दुगुप्सा, वो कसाओं के कारण कैसे दुखी है, जो काम की ज्वर की दशाओं में दस्ता, तो इन कसाओं के कारण वो दुखी है। फिर नाम कर्म के उदय से सुंदर शरीर हो गया तो बस मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा हो गया, थोड़ा काला कलूटा हो गया तो इतनी हीन भावना हो जाती है कि नहीं है ना। ऐसे नीत गोत्र ऊंच गोत्र के हिसाब से है, ऐसे आठों कर्म के उदय में जो अवस्थाएं इसकी बनती हैं वो अपने मोह कर्म के उदय से, मिथ्यात्व के कारण और राग द्वेष के कारण, कसायों के कारण, उन सारी अवस्थाओं में एक दुख का ही अनुभव करता है, दुख ही होता है। इस तरह उन्होंने आठों कर्म के उदय में किस तरह ये जीव संसार में दुखी है इस बात को उन्होंने विस्तार से बताया। फिर उन्होंने 4 गतियों के प्रकरण को लिया, निगोद से बात शुरू की। 4 गतियों के दुखों की चर्चा तो छड़ाला में आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ी है, तो बहुत बहुत ख्याल में है कि किस तरह चार गतियों में दुख ही दुख होता है। लेकिन मैंने बोला ना जैसा पहले ही कि सारे जगत में हमारे जो सारे प्रयत्न हैं, यदि हम उन प्रयत्नों पर निगाह डालकर देखें ईमानदारी से, तो सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो आत्मार्थी हैं, जो मुमुक्षु हैं, जिनने आत्मा के करने का संकल्प लिया है, जो 24 घंटा जिन्होंने इसके लिए दे दिया है, मैं उनकी बात करता हूं। अभी हम सब लोग जो है बैठे हैं, लगभग लोगों का तो 1 पॉइंट प्रोग्रामिंग है, विज्ञान दर्शन का गहराई से अध्ययन करना तो है ना, क्यों आत्मकल्याण की दृष्टि से 5 साल तो वही वही है ना, बाद में जो होगा देखा जाएगा। और ऐसे अन्ना जी अस्पताल जी जैसे हैं, हम जैसे लोग हैं, कोमल चंद जी कहते हैं कि हमने सब घर बार छोड़ दिया है, हम तो स्मारक के पास आकर के आत्मा के कल्याण के लिए ही आए हैं। ये 24 घंटा जो अपने को ऐसा समझते हैं कि हमने आत्मा के कल्याण के लिए समर्पित किया है, तो मेरे सहित उन सबसे मैं ये बात कह रहा हूं कि वे अपने जीवन को सुबह से शाम तक एक एक काम पर निगाह डालकर देखें, जब वो सच्चे सुख के लिए उन्होंने क्या प्रयास किया इतने में, और अपने इस लौकिक जीवन के सुख के लिए, दुख नहीं हो, थोड़े थोड़े से कंफर्ट के लिए कितना समय और शक्ति खर्च की, जरा विचार करें, एक दफे देख ले। जरा तो गर्त आ जाते हैं, चलते ठीक करवा देना, ऐसा कर देना, जरा इन इन बातों के लिए तो कितना कितना पैसा मारता है, क्यों ये जरा ठीक नहीं रहता, वहां ये ठीक नहीं रहता, ये ठीक नहीं रहता, वो ठीक नहीं रहता। आज लाइट चली गई, आज नल में पानी नहीं आ रहा, आज इसमें नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, लेटर में, बाथरूम में, क्यों क्यों वो जल्दी गाड़ी में ये गड़बड़ हो रही, ये हो रही, वो हो रही, ये सारे लौकिक सुविधाओं के लिए है ना, कितना हमारा एफर्ट रहता है। मैं तो सब्जी खरीदने खुद जाता हूं, मुझे दूसरी सब्जी खरीदनी पसंद नहीं रहती, तो 2 घंटे लगते हैं, लग जाते हैं, लेकिन मैं तो जाता हूं खुद, करते कि नहीं करते। यानी हम अपने लौकिक सुख जिसका नाम दुख है उसके लिए कितना प्रयत्न करते हैं, और आत्मा के कल्याण के लिए कितना प्रयत्न करते हैं, अपने अपने जीवन पर उठा के देख लें तो हमें मालूम पड़ जाएगा। निगोद से उन्होंने बात शुरू की कि भाई निगोद में तो अनंत दुख है ही, निगोद के दुखों की एक बात मैं कहके आगे बढ़ूंगा कि निगोद के दुख में मालूम नहीं पड़ता हमको, वही से क्या दुख है, कैसा दुख होगा, उसमें कोई ज्ञान ही नहीं है, दुख कैसे होगा, ऐसा पंडित जी ने प्रश्न किया। कोई ज्ञान ज्ञान जैसे ज्ञान से दुख होता हो, इसी को बेचारे कुछ खबर ही नहीं है, उसे काय का दुख होगा। ऐसा लगता है कि वे ज्ञान होता है तो दुख होता है, ऐसा समझ रहे, तो ज्ञान दुख का कारण है। कहीं कहीं शास्त्र में भी लिखा है, दोस्तों इस अर्थ में लिखा है कि जहां ज्ञान होगा वहां दुख होगा, जहां दुख होगा वहां ज्ञान होगा, मतलब पुद्गल में ज्ञान ही नहीं है तो दुख भी नहीं है, और दुख नहीं है तो ज्ञान नहीं है। तो हमने स्विच चुभाई ना, हाँ, तो ये दुख हुआ इसका मतलब यहां सेंसेशन है, माने ज्ञान है, तो इसके लिए लिखा हुआ, ये बात बताने के लिए लिखा है ना, वो इसलिए नहीं कि दुख ज्ञान का कारण ज्ञान है, लेकिन हमने ऐसा मान लिया। तो कहते हैं भाई देखो कि वहां एक श्वास में 18 बार जन्मता मरता है, और इस मनुष्य में सबसे ज्यादा मनुष्य जीवन में दुख काय का है, जन्म मरण का, जन्म मरण का दुख है, तो सबसे ज्यादा दुख उसमें विद्यमान है। और देखो हमको तो मैंने सारी सामग्री जोड़ी है और सब यहीं रह जाएगी, तो 70 वर्ष तक आपने भोग ली ना, अब रह जाएगी तो रह जाए ना, पन्नालाल जी आगे बात, तो 70 वर्ष के बाद में भी संतोष तेरे को नहीं है, वहां तो हर समय में तुझे छोड़ के जाना है, जो भी तेरे पास है हर समय में बदलना है ना, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण लेना है। तो जिसने पर्याय में एकत्व बुद्धि की है उसको पर्याय छूटना, तो हर समय सर्वस्व मरण का, सर्वस्व नाश का दुख उसको विद्यमान है। अनंत काल तो वहीं बीतता है। फिर वहां से एक इंद्रिय की पर्याय में आता है, देखो एक इंद्रिय की पर्याय में निगोद ही है, निगोद भी एक इंद्रिय की पर्याय है, ये बात समझना आप। वनस्पति जो है ना, वनस्पति एक इंद्रिय में वनस्पति काय, उसमें निगोद होता है। अब निगोद से निकला, नित्य निगोद से तो इतर निगोद है ना, अब उसका भी काल बहुत है। फिर वहां से एक इंद्रिय की पर्याय में आया, निकस भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो, तो उसका काल भी बहुत लंबा चौड़ा है। इसमें लिखा टोटमल जी साहब ने कि उसमें भी अनंत सागर हो जाते, कितने सागर ऐसा लिखा, बहुत काल। फिर तिस पर्याय में आया, दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री पंच इंद्री त्रिंत में, उसका 2000 सागर है। अभी ये कीड़े मकोड़ों के दुख तो हमें साक्षात दिखाई देते ही हैं, दो इंद्री के तीन इंद्री के है ना, त्रिंतों के दुख जिसे अपन बोलते हैं ना, इस त्रिंत गति में सबसे ज्यादा दुख है, क्योंकि निगोद भी त्रिंत गति में शामिल है। दो इंद्री के तीन इंद्री के चार इंद्री के पांच शनि शनि के, इनके जो अनंत दुख है, अनंत काल तो इसमें जाता है, तो यहां सब दुख ही दुख है। सब लोग इसको जानते हैं, नरक के दुखों का वर्णन है कि तीन लोग को नाज जू खाए मिटे न भूख कणा न लहाए। देखो भैया, तीन लोग में कोई अनाज पैदा नहीं होता है, अनाज तो अगला मध्य लोग में होता है। जो कल्पना करके समझाने के लिए कल्पना की है, और खाए कोई खाएगा नहीं, क्योंकि उसे मिलना ही नहीं है, इतना बड़ा पेट कहां से होगा, तीन लोग का खाए अनाज खा जाए, नहीं भी उतना बड़ा चाहिए क्या, नहीं मतलब इतनी आकुलता है कि तीन लोग का अनाज होवे और खावे तो भूख ना मिटे। सर्वा अंदाज कराने के लिए आपको उन्होंने ऐसा बताया कहा है ना, ऐसी सी प्रश्न कथा मेरे समान लोहे गल जाए, ऐसी सर्दी गर्मी के भयंकर भयंकर दुख नरक गति में है, है। अब देव गति और मनुष्य गति जिनको इस जीव ने सुखरूप मान रखा है, ये सुखमय है, वास्तव में तो इनमें दुख है, ये सिद्ध करने की जरूरत है। इसे टोलामी साहब ने उसमें ताकत ज्यादा लगाई। मनुष्य गति में तीन तरह में, बालकपन में, मां के गर्भ में, टोलामी ने खुद लिखा कि लोग समझते हैं बच्चों को काय कह दो, बच्चों को काय कह दो, तो बच्चों को तो तुमसे कई गुना ज्यादा दुख है। क्यों? कि वो अपनी इच्छा व्यक्त नहीं कर सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, और बोल भी दे तो तुम कौन सी इच्छा उसकी पूरी कर देते हो, क्या क्या इच्छाएं पूरी कर सकते हो, तो दो चांट और दे तो हमारे घर ही है ना। आज मृत तुम बूढ़ापन हो, ये मनुष्य गति का दुखी दुख बता, उन्हें सुख कहीं नहीं बताया। और देव गति में भी उनने 90 गृह देव तक 31 सागर की आयु तक की बात करी, क्योंकि वो उसके बाद तो सम्मदृष्टि धर्मात्मा ही जाते हैं। सम्मदृष्टि धर्मात्मा तो नरक में भी सुखी है, संकित सहित नरक का बासा, तो उनके भी दुख ही दुख है। देखो सबसे बड़ा दुख तो जो नीचे के पहले दूसरे स्वर्ग वगैरह है ना, तो उनमें छोटे बड़ेपन का है, छोटे बड़ेपन का है। अभी एक देव है वो इंद्र बना है, और जो ऐरावत हाथी आता है ना, वो भी देवी गति का देव है, वो त्रंज गति का ऐरावत हाथी नहीं है। तो देव को ऐरावत हाथी बनना पड़ता है, अभी ऐसा करें अपने बोली लगाए कि जो बोली लेगा वो तो इंद्र बनेगा, और एक दूसरी बोली लगाए कि वो ऐरावत बनेगा, वो सब नींद में बैठा लेकर उसको ले जाना पड़ेगा, बोले कौन लेगा ऐरावत की बोली, और जितने में बोली इंद्र की जाएगी उसका आधा पैसा उसे दिया जाएगा जो ऐरावत बनेगा, तो अभी कहेगा मुझे नहीं बनना है। समझ गए ना, ऐसा वहां जो छोटे बड़ेपन का जो बहुत है वो बहुत दुख है। असली दुख तो कसायों का है, संयोगों की अनुकूलता प्रतिकूलता कोई दुख थोड़ी है। वास्तविक दुख तो जो हमारे कसायों के कारण अंदर से आत्मा दुखी होता है ना, मिथ्यात्व कसायों के कारण, ऐसे चारों गतियों में दुख ही दुख है। और अब फिर उन्होंने बाद में दो तीन पेज में मोक्ष सुख का वर्णन किया, और उन्होंने इसी दृष्टि से किया फिर आठ कर्मों के हिसाब से, कि ज्ञानावरणी कर्म का नाश हो गया तो केवल ज्ञान हो गया, जानने में तो सारा लोकालोक आ रहा है और जानने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है, इसे दुख होने का सवाल नहीं। देखने में लोकालोक आ रहा है और देखने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। साता साता बेदनी में जो अनुकूलता प्रतिकूलता संयोग हो रहे थे वो है ही नहीं, अब्दाबाद सुख प्रकट हो गया है, समझे ना। ऐसे नीच गोत्र ऊंच गोत्र नहीं रहा, नाम कर्म नहीं रहा, इस सारे कर्मों का अभाव हो जाने से अंतराय कर्म का अभाव हो गया, अनंत वीर प्रकट हो गया, अनंत सुख प्रकट हो गया। तो मोक्ष दशा अत्यंत सुख स्वरूप है। संसार दशा के दुखों का वर्णन किया और मोक्ष दशा के सुखों का वर्णन किया। इस तरह पंडित जी कहते हैं कि अब जे हमारा श्रोता, हमारा पाठक इस बात के लिए तैयार हो गया है कि मुझे संसार अवस्था से निकलकर और मोक्ष अवस्था में जाना, अब मैं इसे मोक्ष की बात करूंगा तो इसके अंदर जले उतरेगी, ये तब जमीन नहीं जोतता तो ये बात ऊपर से ऊपर ही निकल जाती। बहुत से लोग कहते हैं हमें नहीं जाना तुम्हारे मोक्ष मोक्ष में, हमें तो यही सुखी हो, ऐसा कोई रास्ता बताओ, कहते कि नहीं कहते। तो पंडित जी कहते ऐसे जगत के जीव यहां बैठे हैं, इसलिए उन्होंने पूरा अध्याय 30 पेज लगाया इस बात में कि हमारे चित्त में ये बात गहराई से बैठ जाए कि संसार में सुख खोजने की कोशिश करना ये समझदारी का काम नहीं है, उसमें समय और शक्ति लगाने की बिल्कुल रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। सुख तो मोक्ष में ही है, इस संसार से छूटकर मुक्ति का मार्ग हमें कैसे प्राप्त हो, हमारा सारा प्रयत्न इसी दिशा में सक्रिय रहना चाहिए।
आदि सुदावर साई दिन वाणी, शांति सुदावर साई दिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए दिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए दिन वाणी, पूरा पर सब दोष रहित पाप क्रिया